यह 100.1 MHz FM गोल्ड मुंबई प्रस्तुत है कार्यक्रम छू लो आसमान। इस कार्यक्रम में आपसे मिलेंगे माइंड मैप ट्रेनर धर्मेंद्र राय।
आज हमारे साथ हैं धर्मेंद्र राय जी, ये हैं माइंड मैप ट्रेनर। मुझे भी नहीं समझ में आया अभी तक, इनको पूछेंगे अब कि माइंड मैप क्या होता है। माइंड मैप, मैप द माइंड, ओके वेलकम टू इट। वेलकम धर्मेंद्र जी, ऑल इंडिया रेडियो में आप आए, अपना टाइम निकाला। सो अभी हम आपको कुछ टफ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं।
बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर मुझे इनवाइट करने के लिए विकास जी।
हमको ये बताइए, सबसे पहले जो हमारे माइंड में क्वेश्चन है, ये माइंड मैपिंग क्या होता है?
माइंड मैप एक यंत्र है या एक साधन है,
ओके,
जिससे आप जो भी मानसिक काम करना चाहते हैं आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
आई सी।
जैसे आपको आपकी याददाश्त बढ़ानी है, या आपकी रचनात्मकता या क्रिएटिविटी बढ़ानी है, या आपको अब कोई भी काम ज्यादा कुशल तरीके से, ज्यादा एफिशिएंटली करना है, आप माइंड मैप से कर सकते हैं। क्योंकि ये विजुअल मीडियम नहीं है, मैं दर्शकों को या अपने सुनने वालों को दिखा नहीं सकता हूँ, पर कार्यक्रम के द्वारा मैं अपने वेबसाइट का नाम लूंगा तो वो उधर जा पाएंगे और देख सकेंगे कि माइंड मैप क्या होता है। और ये एक नई तकनीक या नया जरिया नहीं है, ये 1960s से इस्तेमाल हो रहा है।
अच्छा।
फॉर्च्यून 500 कंपनीज, बहुत सारे बड़े इंडियन कंपनीज, प्रख्यात यूनिवर्सिटीज, IITs, IIMs, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, इनके बेस्ट टीचर्स और बेस्ट स्टूडेंट्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो इसका कोई वर्ल्ड लीडर भी है क्या? आप, ये आपका ओरिजिनल है या किसी को आप फॉलो करते हैं इसमें?
तो मैंने इसका इजाद नहीं किया है। इसका इजाद श्री टोनी ब्यूजैन ने किया था।
ओके, नाम सुना है।
वो UK के रहने वाले थे और रिसेंटली उनकी डेथ हो गई अप्रैल 2019 में। तो उन्होंने इजाद किया था, वो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, फिर भी उन्हें यादगाश्त बढ़ानी थी और उन्हें स्टडीज ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने थे और बेहतर मार्क्स पाने थे स्कूल में, तो फिर उन्होंने इसका इजाद किया। और बाद में बिजनेस वर्ल्ड के भी बहुत एप्लीकेशंस थे।
अच्छा।
और उन्होंने BBC पे एक बहुत लंबा सीरीज किया था इसके ऊपर, उसके वजह से बहुत ही पॉपुलर हो गया वर्ल्ड वाइड ये माइंड मैपिंग।
हम समझें तो सही क्या चीज है ये?
डेफिनेटली, मेरे बहुत अलग ड्यूरेशंस के प्रोग्राम्स होते हैं, फुल डे प्रोग्राम्स होते हैं, हाफ डे प्रोग्राम्स भी होते हैं, और मैं बहुत खुश हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया ताकि ये माध्यम से भी मैं लोगों तक पहुंच सकूं। बहुत सारे लोग सेमिनार्स अटेंड करना चाहते हैं, कोई लोगों को वक्त नहीं मिलता, कोई लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने जितने भी माध्यम मुमकिन हो उन्हें अपनाए हैं। मैंने रिसेंटली एक बुक लिखा है, उसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। मैंने YouTube पे वीडियोस डाले हैं, मैंने पॉडकास्ट्स किए हैं, तो मैं जितने भी माध्यम से कम्युनिकेट कर सकूं मैं लोगों को कर रहा हूं।
आपने अभी भी मेंशन करा अबाउट मेमोरी, मेरी मेमोरी फेल होती जा रही है, मैं जो देख रहा हूं धीरे धीरे उम्र के साथ, तो मुझे भी हेल्प करेगा कि मैं अटेंड करूंगा? तो
डेफिनेटली हेल्प करेगा।
वेरी गुड, तो नेक्स्ट टाइम यू कैन सी मी देयर।
एंड यू डोंट हैव अ बैड मेमोरी। अगर आपकी मेमोरी खराब होती तो आप इतने बड़े पोजीशन पे और इतनी उपलब्धियां नहीं कर पाते। तो ये पहली बात तो मोस्टली ज्यादातर ये वहम है कि आपको लगता है कि आपकी मेमोरी ठीक नहीं है।
लगता है मुझे, क्यों ना, आजकल कई बार क्या होता है कि मैं जिसको जानता हूँ वो भी कहीं मिल जाते हैं अचानक से, मुझे याद ही नहीं रहता है कौन है ये, या तो चेहरा पहचानने वाला लगता है या कुछ और बात, बट इमिजिएटली ये नहीं समझ में आता कि ये है। कभी कभी लोग इससे मतलब थोड़ा सा बिगड़ भी जाते हैं।
अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म होई जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनो रस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई कैसे चक्कर में पड़ गया हाय 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 कहाँ जान फंसाई मैं तो सूली पे चढ़ गया हाय हाय कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला हाँ अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला मीठी छुरी से हुआ हलाल छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ खई के पान बनाओ रस वाला खुली जाए बंद अकल का ताला एक कन्या कुंवारी हमरी सूरत पे मर गई हाय 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 एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई हाय हाय कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी वावा अरे कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी मिली छोरी तो हुआ निहाल छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ खई के पान बनाओ रस वाला खुली जाए बंद अकल का ताला ओ खई के पान बनाओ रस वाला खुली जाए बंद अकल का ताला फिर तो वैसा करे धमाल सीधी कर दे सबकी चाल ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
हमारे साथ हैं धर्मेंद्र राय जी, माइंड मैप ट्रेनर। ये बताइए आपकी अर्ली लाइफ क्या थी, आप बॉम्बे के हैं कहीं और के हैं, स्कूलिंग कहाँ करे, उसके आगे क्या करे और कहाँ तक पढ़े?
मेरी पैदाइश पुणे में हुई है और मुझे बहुत शौक था किताबें पढ़ने का और नॉलेज पाने का। मैं कुछ बनना नहीं चाहता था।
अच्छा, जस्ट गेन।
हाँ, मुझे सिर्फ विज्ञान समझना था, स्पेशल इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में था और मैं सिर्फ नॉलेज पाने को और नॉलेज समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे ना इंजीनियर बनना था ना डॉक्टर बनना था, मुझे लगा कि मुझे सिर्फ नॉलेज पाना है और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि नॉलेज के साथ क्या करना है।
अच्छा,
पर सब मेरे क्लासमेट्स जो थे वो सिर्फ मार्क्स के पीछे थे और मेमोराइजेशन के पीछे थे, तो मैं बहुत डिप्रेस हो गया और मैंने इनिशियली साइंस में एनरोल किया था 11th और 12th में और फिर मैं निराश होके मैंने कॉमर्स में ट्रांसफर ले ली क्योंकि मुझे लगा कि अगर मुझे साइंस की नॉलेज नहीं मिल रही है जिस तरह से मुझे चाहिए तो फिर कुछ फायदा नहीं है। और मुझे लगता है आज के स्टूडेंट्स, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, सभी लोग बहुत लकी हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं क्योंकि उनको इंटरनेट है और गूगल है और बहुत सारे बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस, ये बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन डाल रहे हैं।
अच्छा,
तो बहुत ही क्रेडिबल कोर्सेज आपको फ्री में या बहुत ही कम कॉस्ट पे मिल रहे हैं। जब मैं एक स्टूडेंट था तब मुझे सिर्फ दो सोर्सेज थे ज्ञान पाने के लिए, एक तो टीचर्स, और टीचर्स से ज़्यादा ज्ञान मिलता नहीं था क्योंकि टीचर्स को पोर्शन ख़त्म करना था और टीचर्स को तभी स्टूडेंट रिलेशनशिप टीचर के साथ इतना स्ट्रिक्ट था कि आप ज्यादातर बात ही नहीं करते थे टीचर से पीरियड के बाद। तो जो भी पीरियड में होता था वो सिलेबस पे होता था और उसके बाद ज्यादा बात नहीं होती थी, तो जो भी डाउट्स थे, जो भी क्लैरिफिकेशंस थे वो नहीं वहीं सुलझा सकते थे। और दूसरा सोर्स था किताबें, और क्वालिटी जो थी किताबों की तभी और अभी जो आपको मिल रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो बहुत सारे लोग सरल तरीके से लिख रहे हैं अभी, तो आजकल के किताबों से बहुत ज्ञान पाया जा सकता, तो तभी ये नहीं था, तो मैं बिल्कुल निराश था, इसलिए मैंने साइंस छोड़ दिया और कॉमर्स ले लिया और उसके बाद मार्केटिंग में एमबीए किया। मुझे मार्केटिंग में भी बहुत रुचि है और मार्केटिंग में भी ट्रेनिंग देता हूँ मैं। उसके बाद बहुत सारे कंपनीज में काम किया, इंडियन कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, और 2009 में मैंने डिसाइड किया कि मेरा पहला प्यार नॉलेज पाना है, तो अब नॉलेज भी पाना है और पैसे भी कमाना है, तो क्या करें? तो ट्रेनिंग बेस्ट है. क्योंकि ट्रेनिंग में आपको लोग पैसा दे रहे हैं नॉलेज पाने के लिए. तो मैंने बोला ये तो अल्टीमेट, ये तो अल्टीमेट लाइफ है मेरे.
यही तो आपने यही रास्ता ले लिया. हमने सुना है कि आप तो वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेनर्स हैं, माइंड मैप छोड़िए, ट्रेनर्स हैं ये कंट्री में. ऐसा मतलब है ना, मैं तो आपको काफ़ी साल से जानता हूँ. आपके अराउंड जितने लोग हैं इनसे भी हम सुनते हैं कि इनको बुलाइए ट्रेनिंग के लिए.
थैंक यू सर. मुझे लगता है ट्रेनिंग में जो सीरियसनेस होनी चाहिए, पहले तो ट्रेनिंग एक फुल टाइम एक्टिविटी है. आप अगर लिंक्डइन पे जाएंगे या कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वो ट्रेनिंग करते हैं.
हाँ, मैं तो बहुत लोगों को जानता हूँ बोलते हैं.
राइट, तो वो कहते हैं अपने आप को ट्रेनर्स. हाँ, बोलते हैं. हाँ. परंतु आप उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाइए या फेसबुक पेज पे जाइए और आप देखेंगे कि उन्होंने
कुछ खास नहीं,
लास्ट ट्रेनिंग 10 साल पहले किया था. अच्छा. उनके पिताजी के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए. ट्रेनिंग एक साइंस है, एक सीरियस प्रोफेशन है. जैसे डॉक्टरी हो या इंजीनियरिंग हो, इट्स अ फुल टाइम प्रोफेशन, इट हैज़ टू बी टेकन सीरियसली. तो मैंने ये बहुत सीरियसली लिया है. मैं 24 आवर्स, कई बार तो बहुत महीनों के लिए छुट्टी भी नहीं लेता हूँ. ट्रेनिंग चलते रहता है या कुछ ट्रेनिंग के ऊपर रिसर्च चलते रहता है, तो इट्स अ फुल टाइम जॉब.
आपने अभी अभी साइंस का मेंशन करा, मैं भी बहुत साइंटिफिक माइंडेड हूँ या था, लेकिन फर्स्ट ईयर कॉलेज में ही मैं फेल हो गया. मैं इसमें था साइंस स्ट्रीम ऑफ मिठीबाई कॉलेज, फर्स्ट ईयर ही फेल हो गया. तो मतलब अभी क्या करें, तो हमारे फादर ने उठा के हमको सांगली भेज दिए, वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग.
अच्छा.
तो वो मैं भूल नहीं पा रहा हूँ कि मैं फेल हो गया, बट ठीक है, लाइफ चल रही है.
एब्सोल्युटली. तो हम दोनों का एक्सपीरियंस काफी सिमिलर है. मुझे एक दफा जीरो मिला था मैथ्स में.
वाओ.
और मैथमेटिक्स टीचर बहुत शर्मिंदा होकर बोली कि
सो डिफिकल्ट टू डू दैट.
तो मैथमेटिक्स टीचर बहुत शर्मिंदा होकर बोली, मैंने कोशिश की आपको कुछ देने की.
कुछ नहीं मिला.
मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, आपके शर्मिंदा हो रहे.
दोनों चीज इक्वली डिफिकल्ट है, 100 मार्क्स लेना और 0 लेना. इन बिटवीन कहीं ना कहीं आप पहुंच जाओगे.
You see, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere, because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity.
What?
My name is Anthony Gonsalves.
Gonsalves?
Right. My name is Anthony Gonsalves. Main duniya mein akela hoon. Dil bhi hai khali. घर भी है खाली, इसमें रहेगी कोई किस्मत वाली. आए जिसे मेरी याद आए, जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए, जब चाहे चली आए. रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420.
एक्सक्यूज मी प्लीज,
माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस.
रियली?
राइट राइट. मैं दुनिया में अकेला हूँ.
Such extenuating circumstances coerce me to preclude you from such extravagance.
What?
Abhi abhi isi jagah pe ek ladki dekhi hai, ar dekhi hai, aj dekhi hai. Abhi abhi isi jagah pe ek ladki dekhi hai, jo mujhe ishaare karti hai, par kisi se shayad darti hai, aur darti hai, aha darti hai. प्यार करेगी क्या डरने वाली, मेरी बनेगी कोई हिम्मत वाली. तो जिसे मेरी याद आए, जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए, जब चाहे चली आए. रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420.
एक्सक्यूज मी प्लीज,
माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस.
ओह माय.
राइट. मैं दुनिया पे अकेला हूँ.
You see, the coefficient of the linear is juxtapositioned by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.
Zoo, 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 zoo. Ru, 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 ru. लेकिन ये याद रहे, अरे याद रहे, आज याद रहे, बड़े बड़े लोग यहाँ हैं, लेकिन ये याद रहे, सच्चा प्यार गरीबों का, बाकी है खेल नसीबों का, नसीबों का, नसीबों का, दिल की ये बातें जग से निराली, ये क्या समझेगी कोई दौलत वाली, तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420.
Excuse me please.
My name is Anthony Gonsalves.
Oh cute.
Right. मैं दुनिया में अकेला हूँ, दिल भी है खाली, घर भी है खाली, इसमें रहेगी कोई किस्मत वाली, हर जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420.
Excuse me please, my name is Frankie.
No.
No. Sebastian.
No.
Goldie. Soldie.
No. Anthony Gonsalves.
Oh yes. Anthony Gonsalves.
हमारे साथ आए हैं आज धर्मेंद्र राय जी, माइंड मैप ट्रेनर. चलिए इनकी आगे बात सुनते हैं. हम सुने कि आपने टेड टॉक करी है, वर्ल्ड की ओनली टेड टॉक आपके सब्जेक्ट पे. क्या है इसका क्लेरिफाई, या पहली? हाँ, नॉट ओनली बट पहली. तो ये कैसे हुआ?
माइंड मैपिंग और क्रिएटिविटी पे पता नहीं क्यों मिस्टर टोनी बिजान ने नहीं किए थे कोई टेडएक्स टॉक, टेड या टेडएक्स टॉक, और बाकी जो माइंड मैप्स के बारे में जानते हैं उन्होंने भी नहीं किया था. तो मैंने पहला वाला किया था 2013 में, और मुझे बहुत खुशी है कि ये टॉक, जो भी सब मेरे टेडएक्स टॉक्स मैंने बिना प्रेजेंटेशंस के किए हैं, मतलब बिना स्लाइड्स के किए हैं,
स्ट्रेट ऑफ.
वो ये बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको स्टेज पे होते हो. yes. और आपको 17 या 18 मिनट्स के लिए बोलना होता है, और लाइव रिकॉर्डिंग चल रही होती है. तो अगर आपने मिस्टेक किया तो आप दुनिया आपको जिंदगी भर के लिए दिखाएगी कि आपने मिस्टेक किया है. तो बहुत मुश्किल होता था, पर फिर भी मैं चाहता था कि मेरा सब्जेक्ट है, और मैं दिखाना चाहता हूँ कि मुझे मालूम है ये सब्जेक्ट. तो सब जो भी टेडएक्स टॉक्स है मेरे, वो सब डायरेक्ट है. और उसके बाद मिस्टर टोनी बिजान ने टेडएक्स टॉक किया है, और तीन चार और लोगों ने टेडएक्स टॉक किया है माइंड मैपिंग के ऊपर.
टेड टॉक के बारे में भी मैं कुछ बोल सकता हूँ.
हाँ जी,
मैंने भी करा एक बार.
मैंने देखा आपका
वीडियो. आपने देखा है, पर मेरा सब्जेक्ट ये था फेलियर पे. नहीं, मेरा खुद का फेलियर पे बात करा. मैं दो बार में बैंकक्रप्ट हो गया. लोग तो बोलते हैं यार तुम इंडियन हो, मत बोलो ये लोगों को कि तुम बैंकक्रप्ट हो गए, तुम्हारे पास कोई आएगा ही नहीं. सो उस पर मैंने ना 13 मिनट बात करी थी. उसमें ऑप्शन था कम से कम बात करने का 13 मिनट्स था.
राइट.
पर आई थिंक मैं बोलते चला गया तो शायद 18 मिनट्स पे चला गया. वो है टेड टॉक, अगर आपने सुन लिया है तो वेरी गुड.
हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया.
पूछते ही रह गए और प्यार हो गया।
हो जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया।
लगता है मेरा सेहरा तैयार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। तुमने हमें बेबस किया,
आपके कस्टमर्स कौन हैं? कॉर्पोरेट्स हैं, ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअली आप सिखाते हैं, क्या है आपका एक्चुअली मोडस ऑपरेंडी क्या है?
ज़्यादातर कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग फॉर्मेट में या क्लासरूम फॉर्मेट में मैं ट्रेनिंग देता हूँ। स्कूल्स और कॉलेजेस को भी बहुत बेनिफिट हो सकता है, पर आप अगर कोई भी स्कूल का विज्ञापन देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हो या प्रिंट मीडियम में देखते हो, तो आपको क्या याद है, आपको दृश्य में क्या दिखता है, कोई भी स्कूल का ऐड हो?
मेरी तो वैसे ही मेमोरी फेल हो रही है, अभी मैंने आपको बोला, आप ही बता दीजिए।
ठीक है, तो मुझे यकीन है कि अगर ये प्रश्न हमारे सुनने वालों को पूछूं, 99% लोग बोलेंगे कि वो एक बिल्डिंग का पिक्चर दिखाते हैं। तो स्कूल दिखाना चाहती है कि इतना अच्छा बिल्डिंग है उनके पास, इतना अच्छा कैंपस है, और कोई स्कूल्स बोलते हैं कि हम हर एक बच्चे को आईपैड देंगे, जैसे जैसे पेरेंट्स उनको नहीं दे सकते, स्कूल को देने की क्या जरूरत है। तो कोई भी स्कूल टीचर्स के बारे में बात नहीं करें, और मुझे लगता है स्कूल्स का मुख्य प्रोडक्ट
टीचर है,
टीचर की क्वालिटी है, टीचर की क्वालिफिकेशंस है, टीचर्स की अचीवमेंट्स है, टीचर्स की कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर। जब मुझे रिक्वेस्ट आता है स्कूल में देने के लिए और मैं कोटेशन भेजता हूँ, तो बोलते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। अच्छे टीचर्स के लिए बजट नहीं है तो स्कूल्स को बंद होना चाहिए, मतलब उनको वो धंधे की काबिलियत नहीं है, वो धंधा या वो सर्विस या जो भी कहे उसकी काबिलियत नहीं है। तो स्कूल्स में डेफिनेटली टीचर्स और स्टूडेंट्स बहुत बेनिफिट होंगे इसे, और बहुत सारे लोग मेरे ओपन सेमिनार्स अटेंड करते हैं बहुत, और कई और थोड़े स्कूल्स ने मुझे उनके टीचर्स को और उनके स्टूडेंट्स को ट्रेन करने का मौका दिया है, पर ये मास मूवमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है।
जैसे मेडिकल में होता है कि हर 5 साल या 10 साल डॉक्टर को री एग्जाम,
राइट,
टू बी अप टू डेट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
यस,
तो स्कूल में भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो टीचर्स आए हैं सालों से, वहाँ ही हैं, उनको तो वही याद है, वही बुक पढ़ते रहते हैं।
करेक्ट,
बुक्स भी आजकल कोई इंडिया में तो इजीली चेंज भी नहीं होती हैं, अपडेट होती नहीं है। मेरे ख्याल से ना 10-10, 20-20 साल पुरानी बुक्स अभी भी चल रही हैं।
करेक्ट,
एज सब्जेक्ट्स।
या
तो ये तो है ना होना, इट्स अ गुड पॉइंट। आप ऑथर भी हैं?
हाँ जी।
एक ही बुक लिखे हैं या ज़्यादा?
नहीं, मैंने फिलहाल तो एक ही बुक लिखा है।
अच्छा।
और बहुत अजीब किस्म का बुक है।
ओके।
सिर्फ 20 पेजेस का है।
ओह रियली, तो बुकलेट हुई है तो।
तो
बुक नहीं,
आप बुकलेट के तौर पे देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली हार्ड कॉपी मिल जाएगी, पर सुनने वाले
सॉफ्ट कॉपी
उसको फ्री में पढ़ सकते हैं अमेजॉन किंडल पे। थिन माइंड मैप बुक।
ओके,
लुक फॉर दैट। मैंने पर्पसली इसको थिन बनाया ताकि ज्यादा
बहुत डिफिकल्ट नहीं हो,
पढ़े। बुक्स पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता। मैं कल ही गुलजार साहब का इंटरव्यू पढ़ रहा था।
अच्छा।
तो वो स्कूल में उर्दू जब पढ़ना शुरू किया उन्होंने, तो वो चाहते थे कि वो 10th तक नहीं पढ़े उर्दू, क्योंकि 10th की टेक्स्ट बुक बहुत बड़ी थी।
ओके।
तभी गुलजार साहब को पढ़ना नहीं पसंद है, तो आम आदमी के बारे में क्या कहेंगे। इसलिए मैंने बिल्कुल थिन 20 पेज वाली बनाई है, और इसका ये मतलब नहीं कि क्वालिटी उसमें नहीं है, ऑन द कॉन्ट्री बेटर क्वालिटी है, क्योंकि अगर आप कम लिख रहे हैं तो मतलब हर शब्द को
वैल्यू करते
से डालना है, हर शब्द जरूरी होता है, तो ऑन द कॉन्ट्री ज्यादा डिफिकल्ट है एक पतला बुक लिखना।
ये भी एक कॉमन चीज है अपने में, मैंने 3 बुक्स पब्लिश करी है, बट वही हुई सिर्फ पब्लिश हुई, बिकती नहीं है। कोई रास्ता होएगा तो बताइए मुझे। मैं हर वीक पूछता हूँ मेरे असिस्टेंट से कितने सेल हुए, बोले सर अभी तक तो एक भी नहीं हुआ।
मैं आपको इंटरव्यू करूँगा उस उन बुक्स,
प्लीज, या प्लीज डू
यूट्यूब चैनल।
अभी नेक्स्ट बुक भी आ रही है, अगले महीना पब्लिश होगी।
डेफिनेटली।
तो ये मेरा पैशन है, बुक बनाना, पब्लिश करना, उसके आगे मैं फिर भूल जाता हूँ उसको।
तुम रहती हो। हर शाम आंखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती। तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुमसे प्यार करूं तुम समझोगी दीवाना, मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। यूं ही जलाते रहना आ आ कर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल दिल के पास तुम रहती हो।
अवार्ड्स भी बहुत मिले होंगे आपको।
हाँ जी, काफी अवार्ड्स मिले हैं माइंड मैपिंग और ब्रेन लिटरेसी, क्योंकि मैं सिर्फ माइंड मैपिंग पे नहीं रुकता हूँ।
हाँ।
मैं बोलता हूँ माइंड मैपिंग एक यंत्र है, पर आप जितना अपने ब्रेन को समझ सको उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल होंगे।
इज इट?
या बिकॉज
ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। नाइदर माइंड मैपिंग, मैपिंग माइंड मैपिंग मीन्स व्हाट, क्या करते हैं, क्या है माइंड को
अपने
आप कैसे टीच करते हैं उसको?
ओके, अपने आपके थॉट्स आप पेपर पे उतारते हो।
ओके,
और आपको ज्यादा से ज्यादा पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए इनकरेज किया जाता है माइंड मैप में।
अच्छा।
और कलर्स यूज करने के लिए इनकरेज किया जाता है, क्योंकि पिक्चर्स और कलर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रेन के लिए। क्योंकि हम इस प्लैनेट पे मिलियंस ऑफ इयर्स से हैं, हमारी स्पीशीज जो होमो सेपियंस जो हम हैं वो हम इस प्लैनेट पे मिलियंस ऑफ इयर्स के लिए हैं, परंतु लैंग्वेज सिर्फ 100,000 इयर्स ओल्ड है। इसलिए हम पिक्चर्स से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं और वर्ड्स और नंबर से कम रिलेट कर पाते हैं।
ओके,
क्योंकि हम हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कलर्स और पिक्चर्स की तरफ है। तो जितना आप पिक्चर्स यूज करेंगे उतनी आपकी याददाश्त बढ़ेगी, उतना आपको मजा आएगा, और आप पिक्चर बना नहीं सकते बिना आपके दिमाग के डीप इस्तेमाल करे बिना।
ओके,
तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रेट करते हो, आप ऑटोमेटिकली माइंडफुल हो जाते हो. आजकल बहुत सारे लोग माइंडफुलनेस के बारे में बात कर रहे हैं, और माइंडफुल क्लासेस में आपको एक किशमिश देंगे और बोलेंगे आप किशमिश अपने अपने टंग पे रखिए और किसके बारे में मत सोचिए और सिर्फ किशमिश के बारे में सोचिए, ये सोचिए कि उसका वजन कितना है, उसका टेक्सचर क्या है. ये सब ठीक है, पर अल्टीमेटली कुछ क्षणों के बाद वो आदमी वापस अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना शुरू करता है. जब आदमी माइंड मैप ड्रॉ करता है, तो अगर आपको पिक्चर ड्रॉ करना है या बहुत सारे पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं, आपको माइंडफुल ही होना पड़ेगा. आप वर्ड्स माइंडलेसली लिख सकते हैं, पर पिक्चर्स और एक पूरा माइंड मैप बनाना, उसके लिए आपको माइंडफुल होना ही पड़ेगा. तो वह बहुत अहम बात है माइंड मैप्स में.
अभी कुछ कुछ समझ में आ रहा है. अवार्ड्स के बारे में क्या बोल रहे थे आप?
हाँ, अवार्ड्स मुझे बहुत सारे मिले हैं माइंड मैपिंग और ब्रेन लिटरेसी के लिए. रिसेंटली मुझे एक यूनाइटेड नेशंस का अवार्ड मिला था. पर मुझे सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब मुझे एक इंटरनेशनल क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्राइज मिला था. वो दुबई में हुआ था 2011 में, और बहुत सारे लोग बहुत सारे कंट्रीज से थे. चाइनीज लोग थे, अमेरिकन लोग थे, यूके के लोग थे, दुबई के लोग थे, सिंगापुर के लोग थे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लोग थे. तो इन सब में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला क्रिएटिविटी में. और एक तो प्राइज मिलने का मजा तो अलग है ही, पर वो बात को सेपरेट रखते हुए जब मुझे वो प्राइज मिला, जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, तो बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्रीज के मेरे फोटोग्राफ्स लेने लगे. सेल्फीज नहीं,
अच्छा
सोलो फोटोग्राफ्स.
ओके.
और इतना उत्साह उनमें कि तब मैं सोच रहा था कि ये कंट्रीज में क्रिएटिविटी एक बहुत अहम चीज है. उनकी सोसाइटी क्रिएटिविटी को वैल्यू करती है, क्योंकि उनको समझ गया है कि फ्यूचर सिर्फ जो क्रिएटिव लोग हैं उनका ही है. बाकी लोग जो क्रिएटिव नहीं है, उनके जॉब्स रोबोट्स और मशीन्स और एल्गोरिथम्स और कंप्यूटर ले लेंगे. तो ये मुझे बहुत डीपली स्ट्राइक हुआ. मैंने सोचा ये ठीक है, अवार्ड मिलना ग्रेट बात है, पर ये लोग इतनी उत्साह
वैल्यू क्यों दिखा रहे हैं?
और मैंने सोचा कि ये इंडिया में लाना पड़ेगा. तो मैं क्रिएटिविटी के बारे में बहुत बात करता हूँ और लोगों को डराता हूँ कि अगर नहीं होंगे क्रिएटिव होंगे तो एक तो पैसा है, दूसरा हर आदमी चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, वो थॉट लीडर हो. तो ना पैसा मिलेगा ना थॉट लीडरशिप मिलेगी, आपकी कोई अहमियत नहीं रहेगी अगर आप क्रिएटिव नहीं हो. वो मैसेज मैं भेजना चाहता हूँ. ये शायद नेगेटिव मैसेज लगे, कोई लोगों को अच्छा नहीं लगे, पर मुझे लगता है ये सच्चाई है.
ओके.
पीएम मोदी ने एक बहुत ही अच्छा किताब लिखा है, द एग्जाम वॉरियर. उसका टारगेट स्टूडेंट्स है, इसलिए एग्जाम वॉरियर उसका टाइटल है. और रीप्रिंट आ रहा है, तो मुझे लगता है सेल्स काफी अच्छे हो रहे हैं. और उसमें काफी जिक्र है माइंड मैप्स का. माइंड मैप विजुअली भी दिखाया गया है, और पीएम मोदी कह रहे हैं स्टूडेंट से कि आपको माइंड मैप करना चाहिए.
अच्छा.
इससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आपको रिविजन के लिए कम टाइम देना पड़ेगा, और आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे.
ओके.
तो जब मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, तो मैं क्रिएटिविटी की बात ज्यादा नहीं करता हूँ. मैं बोलता हूँ ये यंत्र से आपका रिविजन टाइम 90% से कम हो जाएगा. okay. क्योंकि मुझे पहले स्टूडेंट का स्ट्रेस कम करना है. स्टूडेंट को ऐसे ही वैसे ही इतनी चीजें बोल रही है सोसाइटी, टीचर्स कुछ बोल रहे हैं, पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, तो पहले मेरा पहला उद्देश्य है उनका स्ट्रेस कम करना. बोलना कि ये देखिए, ये यंत्र से 90% टाइम रिड्यूस होगा रिविजन में. आपको ज्यादा टाइम मिलेगा रिलैक्स करने के लिए, खेलने के लिए. उसके बाद मैं थोड़ा क्रिएटिविटी के बारे में बोलता हूँ.
तो
बच्चों को समझाने के लिए मैं ऐसे तरकीब इस्तेमाल करता हूँ.
दिलबर मेरे, कब तक मुझे ऐसे ही छड़ पाओगे? मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे. दिलबर मेरे, कब तक मुझे ऐसे ही छड़ पाओगे? मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे. एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे.
सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में घिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में घिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में हो दिल मचल जाए पिघल जाओगे लगोगे तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे दिल से मिलेगा जो दिल को महकने लगोगे तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे पिघल जाओगे एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे दिल पर मेरे कब तक मुझे
मैं हूं विकास मित्तसेन। अभी तक मेरी आवाज़ से भी आप जुड़ गए होंगे नाम और मैं। हमारे साथ हैं धर्मेंद्र जी राय, ये हैं माइंड मैप ट्रेनर। अभी तक आप इतनी जो बात सुनी है कुछ तो समझ गए होंगे क्या होता है ये। आगे चलते हैं। आपको ट्रेन करा था डॉक्टर रामचरण ने।
हाँ जी।
ये तो बहुत बड़े फेमस वर्ल्ड वाइड फेमस आदमी है।
यस सर।
तो आप उनके तरह उनके साथ उनके तक पहुँच कैसे गए?
वो इंडिया आए थे और उन्होंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का अनाउंसमेंट किया था और जो सुनने वाले हैं मैं उनको बता दूं कि डॉक्टर रामचरण इतने फेमस हैं, इतने बड़े कंसल्टेंट हैं कि आप अगर फॉर्च्यून 500 कंपनीज को देखें वर्चुअली आधे फॉर्च्यून 500
उनके
के चीफ एग्जीक्यूटिव
उनके पास आते हैं।
डॉक्टर रामचरण को फर्स्ट नेम बेसिस पे जानते हैं। मतलब इतने इतने बड़े पर्सनालिटी हैं और फॉर्च्यून मैगजीन जो दुनिया में बहुत ही क्रेडिबल मैगजीन है उन्होंने कहा है कि डॉक्टर रामचरण इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंसल्टेंट इन द वर्ल्ड। बहुत ही बड़ी चीज़ है, मेरे लिए भी बहुत ही बड़ी चीज़ थी उनसे मिलना और उनसे सीखना। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट, रिजल्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, साइंटिफिक थिंकिंग इज इम्पॉर्टेंट। और एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझे लगता है इंडियन कल्चर में लोगों को लाना चाहिए वो है कि रामचरण जी कहते हैं कि बहुत सारे चीफ एग्जीक्यूटिव्स यूएसए में या जो स्मार्ट कंपनीज हैं जैसे गूगल एप्पल फेसबुक अमेजॉन इनके लेवल की कंपनीज हैं वो कंसल्टेंट्स में बिलीव करते हैं। वो पहले तो कंसल्टेंट्स को बहुत अच्छा पैसा देते हैं और कंसल्टेंट्स को एनकरेज करते हैं उनके नेगेटिव क्वालिटीज के बारे में बात करने के लिए, नेगेटिव फीडबैक के लिए एनकरेज करते हैं क्योंकि फिर ही उनको पता पड़ेगा असलियत। क्योंकि अगर मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूं मेरे सब एम्प्लॉयज तो मेरी अच्छा ही करेंगे, कोई बुराई नहीं करेगा क्योंकि उनको अपने करियर से प्यार है। तो एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट जो आपको नेगेटिव फीडबैक दे बहुत ही क्रिटिकल है. तो बहुत सारी चीज़ें रामचरण जी ने बताई, पर मुझे लगता है ये एक चीज़ है जिसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा गैप है. इंडिया में कोई भी नेगेटिव फीडबैक दो लोग एकदम आपके दुश्मन हो जाते हैं. मैं एक ट्रेनिंग कर रहा था एक स्टार्टअप के लिए और मैंने कहा कि ज़्यादातर स्टार्टअप्स इंडिया में फेल होंगे. नाउ ये मेरा ऑब्जेक्टिव रिसर्च बैक्ड ओपिनियन है, मैं ऐसे ही नहीं सुबह सुबह कुछ बड़बड़ा तो इसलिए बोल रहा हूँ ये रिसर्च बैक्ड, और मेरे पास बहुत सारे कारण हैं ये कहने के लिए. तो वो इमिजिएटली रूट गए और मुझे लगता है कि वो मुझे वापस नहीं बुलाएंगे. तो फिर फायदा क्या है कंसल्टेंट बुलाने का, अगर आपको अच्छी चीजें जाननी है आपके बारे में तो फिर आप अपने एम्प्लॉई से पूछे, आपको बाहर मुझ जैसे कंसल्टेंट लाने की जरूरत नहीं है, मेरा खर्चा बच जाता. तो ये बहुत अहम चीज, ये अगर एनकरेज करे तो इंडिया कैन बी अ सुपर पावर इन द नेक्स्ट 10 years इफ दिस इज रियली टेकन सीरियसली.
डॉक्टर रामचरण ने बात करी थी ना बॉटम ऑफ द बैरल,
नहीं वो डॉक्टर सी के प्रहलाद थे.
वो डॉक्टर सी के प्रहलाद, ठीक है, नेक्स्ट टाइम उनकी बात करेंगे. और बताइए हमने क्या मिस करा है जो आप बोलना चाहते हैं या बताना चाहते हैं.
मुख्य बात तो यही थी माइंड मैपिंग और ब्रेन लिटरेसी के बारे में मुझे अवसर मिला है हमारे सुनने वालों से बात करने का, और मुझे लगता है आप कुछ पर्सनल बात पूछते हैं आपके आपने जैसे मिस्टर निरंजन हीरानंदानी और डॉक्टर अनुराग बत्रा को पूछा कि आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताइए जो लोगों को पता नहीं है.
चलिए आप ही बताइए हमको.
तो आपने ये प्रख्यात पिक्चर देखी होगी जोकर, जिसको मैक्सिमम अवार्ड नॉमिनेशन है, और वकीन फीनिक्स मोस्टली बेस्ट एक्टर अवार्ड तो लेके ही रहेगा, अगर कोई भी बेट कर रहा है तो उसके ऊपर ही बेट करेगा. तो उसमें जोकर को दिखाया गया है कि वो एक डिजीज से सफर करता है. उसको कहते हैं क्रॉनिक लाफिंग और क्राइंग डिजीज, या पैथोलॉजिकल क्राइंग और क्राइंग और लाफिंग डिजीज, ऐसा कोई नाम है. तो मुझे पैथोलॉजिकल लाफ्टर का प्रॉब्लम है, क्राइंग का प्रॉब्लम नहीं है.
ओके.
तो ये मुझे नहीं मालूम, पता ये बीमारी है नहीं, पर वो जो कंडीशन जोकर में है वो हंसता है पर उसे फनी नहीं लगता, फिर भी हंसता है. मुझे बहुत सारी चीजें फनी लगती
है, इसलिए हंसते हैं.
और अगर मैं हंसता हूँ तो रोकना बहुत मुश्किल होता है, पेट बहुत दर्द होता है. मैं एक होटल में गया था और मैं चेक इन कर रहा था, तो मैंने बोला आपके पास कुछ प्रिंट में है जहाँ लिखा होगा कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, उनके टाइमिंग्स क्या है. तो उन्होंने मुझे एक प्रिंट आउट दिखाया और वही पढ़ने लगे, मेरे सामने पढ़ रहे हैं जैसे मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ. तो ये देखिए ये 7 बजे है और 9 बजे बंद होता है, और मुझे इतना फनी लगा मैं 10 मिनट के लिए
हंसते रहे,
रोक नहीं सका. तो मुझे कोई भी सीरियस सिचुएशन में या किसके फ्यूनरल पे जाना
कुछ फनी दिख जाए
बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं कब
हंस पड़ेगा.
तो अच्छी बात है क्योंकि अभी लोग समझ जाएंगे और मुझे माफ करेंगे अगर क्योंकि अगर उन्होंने ये सुना है तो.
आज के जो यंगस्टर्स हैं जो कॉलेज से निकल रहे हैं या उनको मतलब है ना ये विचार करना है कि हम क्या करें, कई सोचते हैं कि हम ट्रेनर बन जाएं, तो इनको आप क्या बोलना चाहते हैं.
मुझे लगता है कि उनको बहुत इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, उन्हें बहुत सारी किताबें पढ़ना चाहिए, और उनको डिसाइड करना चाहिए उनको ट्रेनर बनना है और कुछ भी बनना है. उनको ऐसा विजुलाइज करना चाहिए कि ये काम है जो मैं दिन में 10-15 घंटे कर सकता हूँ, क्या मुझे ये काम अच्छा लगेगा. अगर हाँ फिर उनको दूसरा प्रश्न और आखिरी प्रश्न पूछना है कि क्या मैं इसमें से पैसे बना सकता
हूँ. मैं तो यही पूछने वाला था.
तो ये दोनों के लिए अगर यस है फिर ही लोगों को उसमें डाल जाना चाहिए. ट्रेनिंग बिजनेस इंडिया में तो बहुत ही टफ है, अगर उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है फिर ठीक है, नहीं तो ऐसे ही अगर जाएंगे इस बिजनेस में तो
डिफिकल्ट है.
मैं हूँ क्योंकि मेरा जुनून है, ये आप कर्स बोल सकते हैं या ब्लेसिंग बोल सकते हैं आपके दृष्टिकोण पे है, मैं और कुछ कर नहीं सकता. तो मैं इधर हूँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बचपन से ये जुनून है. पर हर एक आदमी को इंट्रोस्पेक्ट करके सोचना चाहिए कि उसका पैशन कहाँ है और वो पैशन से वो डिसेंट जिंदगी जी पाएगा या नहीं.
ये बहुत बढ़िया एडवाइस है, आई एम श्योर हमारे सुनने वाले जो हैं इसको नोट करेंगे. एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो विच हैज कम आउट ऑफ दिस क्वेश्चन. आप हर बार कंपनी में जाके ट्रेनिंग करते हैं,
हाँ जी,
आपने कभी सोचा नहीं कि अपना खुद का इंस्टीट्यूट बना लें, छोटा ही सही, जहाँ लोग खुद आए तो आपको यहाँ वहाँ नहीं भागना पड़े, आपका टाइम बेटर यूटिलाइज होए, पीपल शुड नो कि आपको ट्रेनिंग चाहिए तो यहाँ जाओ.
या सो वो भी है.
और आपके अलावा उसमें फिर और भी लोगों को अंडर यू यू कैन ट्रेन, सो इट कैन बी अ लार्जर प्ले.
हाँ तो मैं ओपन सेमिनार भी कंडक्ट करता हूँ जहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे जगहों से. कोई लोग पौंडीचेरी से आए हैं, कोई लोग दिल्ली से आए हैं, कोई लोग गुजरात से आए हैं. तो वो अपना एक सीट खरीदते हैं मेरे ओपन सेमिनार में और आ जाते हैं. तो वो भी है. और कंपनीज अगर कोई वेन्यू में बुलाते हैं या उनके कंपनी में बुलाते हैं तो वो भी करता हूँ. तो जैसे भी कस्टमर्स को सीखना है मैं उनको मदद करने के लिए तैयार हूँ.
थैंक यू वेरी मच. हमारा टाइम ख़त्म हो गया अभी, नहीं तो और भी बात कर लेते.
थैंक यू फॉर कॉलिंग मी सर.
हमारे साथ हैं धर्मेंद्र राय जी, मैं माइंड मैप ट्रेनर, और मैं हूँ विकास मित्र सेन. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन.
छू लो आसमान इस कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान थे माइंड मैप ट्रेनर धर्मेंद्र राय. कार्यक्रम के निर्माण में सहयोग मिला प्रीति यादव का. FM गोल्ड मुंबई की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने.